और पूरी लाइब्रेरी के समीप झील के किनारे पड़ी बेंच पर बैठे बात कर रहे थे। वे विश्वास कर बैठे कि अवस्थी जी से पाए आश्वासन के मेघ पर चढ़कर वे सुनिश्चित पर्याप्त जीविका के स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। वह मेघ यथार्थ की धूप का स्पर्श पाकर अदृश्य हो गया था। पूरी समृद्ध के मेघ पर सवारी का स्वप्न छोड़कर कम से कम इतनी जीविका की छांव तो चाहता ही था कि अभाव की आंच में सूख न जाए। वह अवस्थी जी की छलना पर और कभी कनक की सरलता पर खिन्नता प्रकट कर रहा था। कनकपुरी का अनुभव सुनकर व्याकुल थी। एकाएक पीछे सड़क पर शोर सुनाई दिया। दोनों ने घूम कर देखा तो स्थानीय पहाड़ी लोगों का एक दल गाता बजाता विजय उल्लास में ललकारता मल्ली ताल की ओर जा रहा था। कनक और पुरी के मन में उन लोगों के गीत का अर्थ जान लेने की उत्सुकता थी, परंतु कैसे जान पाते। पुरी और कनक के सिर फिर जीविका के उपाय सोचने की चिंता में झुक गए। लखनऊ से लौटकर पुरी फौरन लाहौर लौट जाने के लिए छटपटा रहा था। लाहौर में कष्ट होने पर भी वह अपने स्थान पर तो था, किसी न किसी प्रकार जीविका तो कमा ही सकता था। अपने और कनक के भविष्य का मेल उसे फिर अपने सामर्थ्य से परे लंगड़े के पहाड़ लांघने की कल्पना के समान जान पड़ने लगा था। कनक ने आग्रह से कहा, चाहे जो हो, आज स्वतंत्रता की घोषणा के समय तो हम लोग अवश्य साथ रहेंगे। हमारे लिए क्या स्वतंत्रता है? पूरी खिन्नता से बोला, हम लोगों के तो घर बार उजड़ रहे हैं, हम लोग बलिदान हो रहे हैं। यह लोग तो दूसरों के बलिदानों से होम करके उसका श्रेय ले लेना जानते हैं। यह लोग अपने आप को समझते क्या हैं? सन 42 में जब संकट था तो फोन करके जेल चले जाते थे कि पुलिस का थप्पड़ न सहना पड़ जाए। हमने भी स्वतंत्रता के लिए संकट सहा है, जेल भुगती है, अब हमारे लिए राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य रह गए हैं। हम क्या इन लोगों के मोहताज हैं? उत्सव मनाने का अधिकार तो तुम जैसे ही लोगों को है। तुम क्या किसी आशा से जेल गए थे? हमारे भी दो हाथ पांव हैं, हमें इन लोगों की परवाह ही क्या है, देख लेंगे। मैं एक बार उन अवस्थी जी से पूछूंगी जरूर, मेरी बात मानो, जहां इतना किया है जैसे भी हो 5 दिन और ठहर जाओ। पिताजी ने 18 तारीख को यहाँ आने के लिए लिखा है, एक बार हम दोनों साथ साथ लखनऊ चलें, मैं देखूंगी अवस्थी जी मेरे सामने क्या कहते हैं। तुम्हारा मतलब है मुझे उन लोगों से बात करना नहीं आया? पूरी झल्ला उठा, हाय यह बात नहीं, तुम्हारे बराबर मैं क्या बात कर सकती हूँ, परंतु मैं उन्हें उनका वचन याद दिलाना चाहती हूँ। कनक ने पुरी के चुटियाए मन के प्रति सहानुभूत से कहा। पुरी बौखला उठा, उसके पुरुष के संस्कारों के अनुसार कनक आत्मसमर्पण कर चुकी थी तो उसे पति के मत का विरोध करने का अधिकार भी न रहा था। बोल उठा, तुम क्या समझती हो, उससे फ्लर्टेशन, उसका बहलाव करके मुझे नौकरी दिला दोगी? ऐसी नौकरी पर मैं लात मारता हूँ। फ्लर्टेशन का क्या मतलब? कनक ने चौंक कर आपत्ति की। पीए का संकेत तुम समझना न चाहो तो उपाय क्या है? कनक कुछ देर सोचकर बोली, तुम पीए की बात पर ही क्यों जाते हो? तुम एक बार अवस्थी जी से मिल लिए होते तो दूसरी बात थी, हो सकता है वे उस समय बहुत ही व्यस्त रहे हों। इन छोटे लोगों का तो दिल भी छोटा होता है, हम दोनों साथ साथ ही उनसे मिलें। पूरी कनक का सुझाव मानने को तैयार न हुआ। कनक ने बहुत अनुरोध से कहा, सोचो तो, मुझे सदा क्या ऐसे ही दूर रखोगे? हम दोनों का भविष्य तो इसी बात पर निर्भर करता है। कनक 1 बजे के लगभग लौटी तो नैयर बरामदे में कुर्सी पर अधलेटा सा हाथों से सिर को पीछे से थामे मौन और निश्चल पड़ा था। अंदर गई तो कांता की आंखों में भी रोने और आंसू पोछे जाने की सुर्खी दिखाई दी। कंचन ने धीमे धीमे बताया कि बैरिस्टर मिर्जा का पत्र आया है कि जीजा जी की कोठी पर अमृतसर के किसी मुसलमान ने ताला तोड़कर कब्जा कर लिया है। मिर्जा ने लिखा था, पुरानी अनारकली की तिलक गली में नैयर के दोनों मकानों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसने आश्वासन भी दिया था कि वह नैयर की जायदाद की रक्षा के लिए स्थिति के अनुकूल हर संभव प्रयास करेगा। नैयर की माँ और बहन भी निरंतर रो रही थीं। कांता की आंखों में भी आंसू बार बार आ जाते थे। कनक कांता के पास जाकर सहानुभूति के लिए कुछ कहना ही चाहती थी कि तार वाले की पुकार सुनाई दी। तार नैयर के नाम था, परंतु कनक ने ही ले लिया और लिफाफा खोल लिया। पंडित जी का दिल्ली से तार आया था कि वे माँ सहित 13 की संध्या सुरक्षित पहुँच गए हैं और पत्र में सारी बातें लिख रहे हैं। सबके सब एकत्र हो गए, सोचने लगे कि 11 तारीख की घटनाओं के कारण उन्हें लाहौर से भागना पड़ा होगा। कांता यह सोचकर फिर रोने लगी कि ग्वाल मंडी का मकान और प्रेस भी गया। आहें और लंबी लंबी सांसें भरते हुए कांता ने बड़े तलनी की कढ़ाई चढ़ाई दी थी। बड़े तैयार होते होते 6:15 बज गए थे। नयर ने चेतावनी दी थी कि 7 बजे के पहले सब तैयार हो जाएं। 2 घंटे आग के सामने बैठने से सब स्त्रियां पसीना पसीना हो गई थीं। कनक को ध्यान था कि पूरी 7 बजे उसकी प्रतीक्षा करेगा, परंतु नहाना भी आवश्यक था। एक गुसलखाना और इतने लोग नहाने वाले, विलंब हो रहा था। सब सोचने लगीं कि कौन से कपड़े पहनने जरूरी थे। कनक यत्न करने पर भी जल्दी तैयार होकर पहले न निकल सकी। माल रोड की दुकानों पर दिवाली सजी हुई थी। कनक आंखें फाड़ फाड़ कर पूरी को ढूंढ रही थी, परंतु कैपिटल के सामने फाटक तक पूरी उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। कुछ पलों में कनक की दृष्टि पूरी पर पड़ी तो उससे आगे चलते नयर ने पहले ही पूरी को पुकार लिया और उसे भी साथ ले चला। कनक ने सोचा कि यदि पूरी परिवार के मित्र के तौर पर साथ है तो वह सबके सामने निसंकोच उसके साथ रह सकेगी। क्लब के द्वार पर भीतर से कोलाहल की गूंज सुनाई दी, जिससे अंदर जमा भीड़ का आभास मिल रहा था। नयर के प्रवेश करते ही कई लोग उससे मिलने आए, सभी पी रहे थे। सरदार जी ने नयर से देर से आने की शिकायत की। पांडे भी गिलास हाथ में लिए नयर से मिलने आ गया। नयर के परिवार से मिलने के बाद उससे अंग्रेजी में घोषणा की, आज कोई राजनीतिक मतभेद और विवाद नहीं, विदेशी रास्ता से मुक्ति का उत्सव है। क्लब में तेज प्रकाश और सजावट आंखों को चौंधिया रही थी। 2 बड़े हालों में बड़े बड़े मेजों पर बड़े बड़े थालों में अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। लोग अलग अलग टोलियों में अपनी अपनी रुचि के अनुसार चले गए। बहुत से लोगों के हाथ में गिलास थे। 11:15 बजे तक सब खा चुके थे। खाने की लगभग प्रत्येक वस्तु काफी मात्रा में बच गई थी, परंतु पेय बिल्कुल समाप्त हो गए थे। सब अपनी अपनी बातों में लगे थे। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, सुनिए सुनिए। क्लब के हाल में भरी हुई गूंज शांत हो गई। अंग्रेजी में सुनाई दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। असेंबली के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में पधार रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्वेत खादी के वस्त्र पहने हैं। गैलरियों में प्रतिष्ठित दर्शक बैठे हैं। प्रधान की कुर्सी के दोनों ओर अनेक देशों के राजदूत उपस्थित हैं। इस समय 11:05 हो रहे हैं। श्रीमती सुचिता कृपलानी और श्रीमती नंदिता कृपलानी वंदे मातरम गान करेंगी। रेडियो से वंदे मातरम गान सुनाई दिया। सूट या यूरोपियन पोशाक पहने अधिकांश लोग सावधान अटेंशन की मुद्रा में बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। पश्चिमी व्यवहार से अपरिचित, विशेषतः बहुत से खद्दरधारी लोगों ने अभी राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नहीं सीखा था। वे शरीर को ढीला छोड़े ऐसे खड़े थे जैसे मदारी का खेल देख रहे हों। अपने इतिहास के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जब अनेक वर्षों के संघर्ष के पश्चात हम देश का शासन संभाल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं, किसी ने कहा। इन हिंदी हिंदी में कई लोगों ने विस्मय प्रकट किया। नय्यर ने बचपन में हिंदी नहीं पढ़ी थी, शब्द उसे समझ नहीं आए, परंतु देश के प्रधान को देश की भाषा में बोलते सुनकर एक अद्भुत रोमांच अनुभव हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहे थे, हम उस सर्वशक्तिमान भगवान को, जो मनुष्यों और राष्ट्रों का भाग्य निर्णय करता है, धन्यवाद देते हैं। हम अपनी श्रद्धा राष्ट्र के पिता, राष्ट्र के गुरु और पथ प्रदर्शक महात्मा गांधी के प्रति अर्पण कर रहे हैं। हम उन सब लोगों के प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के संग्राम में त्याग और बलिदान द्वारा सहयोग दिया है। कनक ने समीप खड़े पूरी की बांह से अपनी बांह का स्पर्श कर दिया, मानो कनक को इसका गर्व था। लोगों में व्याख्यान सुनने के लिए धैर्य और संतोष नहीं था। उन्हें किसी से कुछ सुनने समझने की आवश्यकता नहीं थी। वे जानते थे कुछ मिनट में रात के 12 बजे की टंकोर के साथ उनका देश संसार के दूसरे राष्ट्रों के समान स्वतंत्र और सार्वभौम सत्तापूर्ण राष्ट्र बन जाएगा। सदियों की गुलामी का कलंक दूर हो जाएगा। वही उनके लिए पर्याप्त था। वे केवल अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली टंकोर सुनने के लिए आतुर थे। रेडियो विधान परिषद दिल्ली में दिए जाने वाले भाषण सुना रहा था, परंतु क्लब का हाल फिर लोगों की आपसी बातचीत से गूंजने लगा था। नेहरू पंडित जी, जवाहरलाल जी, पंडित नेहरू, पुकारें सुनाई दीं और हाल में एक बार सन्नाटा हो गया था। पंडित नेहरू का स्वर था, बहुत बरस पहले हमने कुछ अहद करके अपनी किस्मतें दांव पर लगा दी थीं। आज उन अहदों को पूरा करने का वक्त आ गया। आज़ादी के साथ ही बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां भी हम पर आयद होती हैं। इस असेंबली में उन जिम्मेवारियों को पूरा करना है। हमारे लिए अब आराम और चैन का वक्त नहीं आ गया है, बल्कि हमें और भी ज़्यादा लगन और मेहनत से और त्याग से काम करने की, अपने वायदों को पूरा करने की कोशिश करनी होगी। जनता को आज़ादी की जिम्मेवारियों की चिंता नहीं थी। जनता को आज़ादी के लिए दिए गए मूल्य की भी चिंता नहीं थी। यह भी चिंता नहीं थी कि उनके हाथ क्या आएगा। आज़ादी न होना उनके लिए राष्ट्रीय अपमान का कारण था। वे केवल आज़ादी चाहते थे। आज़ादी की घोषणा करने वाली टंकोर सुनना चाहते थे। क्लब के हाल में फिर लोगों की आपसी बातचीत की गमगमाहट भर गई। पंडित नेहरू का भाषण भी उसी में डूब गया। रेडियो पर घड़ी ने सुरीली टंकोरों में 12 बजने से पूर्व का संकेत बजाया और ऊंचे स्वर में टन 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 टन। कनक और पूरी के हाथों ने छिपे छिपे एक दूसरे के हाथों को दबा लिया। रेडियो टंकोर समाप्त होते ही रेडियो से बहुत ऊंचे स्वर में शंख की मंगल ध्वनि हुई। रेडियो में से ऊंची ललकार सुनाई दी, 15 अगस्त जिंदाबाद। शरीरों में बिजलियां तड़प गईं। हुर्रे 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 हुर्रे, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। लोग उछलने लगे, उछल उछल कर कूद कूद कर गले मिलने लगे। इसमें अधिकांश ऊंचे मध्यम वर्ग के शासन के सूत्रों से जीविका और लाभ पाने वाले लोग थे, जो कभी विदेशी रास्ता से विद्रोह करने का, स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने का साहस नहीं कर सके थे। आज उनके अंतर मनों में भी दबी छिपी स्वतंत्रता की स्वाभाविक कामना उफन पड़ी थी। रेडियो से असेंबली के मेंबरों के प्रतिज्ञा पत्र पढ़ने की आवाजें आ रही थीं। क्लब की खास मित्र मंडली जामे आज़ादी पी रही थी। झील के किनारे आतिशबाजियां छूट रही थीं। वहां कई टोलियां अलग अलग नाच गा रही थीं और रह रह कर प्रमुख नेताओं के नाम लेकर नारे लगा रही थीं। क्लब से सरदार जी, नैयर, पांडे आदि झील की ओर चल दिए और उनके पीछे नैयर के परिवार के लोग और पूरी चले जा रहे थे। तीनों बहक में बातें कर रहे थे। एकाएक नजर गंभीर होकर पुरी की ओर घूम गया। हम लोगों में से भाई पुरी ने ही स्वतंत्रता के संघर्ष में जेल काटी है। भाई पुरी, आप जैसे लोग तो आज के उत्सव के हीरो हैं। शासन की गद्दी पर चाहे जो बैठ जाए, कोई परवाह नहीं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। पुरी ने उत्तर दिया, हमने किसी आशा से स्वतंत्रता के संघर्ष में सहयोग नहीं दिया था। पांडे सिगरेट से लंबा कश खींचकर राग झाड़ते हुए बोला, आशा? स्वतंत्रता से क्या आशा? स्वतंत्रता ही क्या सब कुछ नहीं है? सरदार जी ने उद्गार प्रकट किया, स्वतंत्रता दिलाई है नेताजी ने, पर नेताजी कहाँ हैं आज? इन लोगों को स्वतंत्रता से क्या मिलेगा? नैयर ने मैदान में ताली बजाते कूदते नाचते कुलियों की ओर संकेत करके पूछा, सुबह फिर रिक्शाओं में जुट जाएंगे, पर उन्हें भी कुछ अनुभव हो रहा है। नेताजी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रीय पताका उठाए जोश से नारे लगा लगा कर चक्कर लगाती हुई टोली नय्यर और पांडे के दल के समीप से गुजर गई। 15 अगस्त प्रातः पूरी की नींद खुली तो पहला ख्याल उसे लाहौर लौट जाने का आया। बहुत देर तक सोचता रहा। वह घर में और गली में सब लोगों से कहकर आया था कि नैनीताल नौकरी के लिए बुलाया गया है, अब जाकर क्या मुंह दिखाएगा। उसने देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। अपने लिए कुछ न चाहा था, परंतु देश की स्वतंत्रता मुझे जीविका देने का भी उत्तरदायित्व तो नहीं लेना चाहती। क्या यह देश की कृतज्ञता नहीं है? कैसी विडंबना है! केवल अवस्थी जी और मिस्टर बन जाने वाले लोग ही तो देश नहीं हैं। सभी लोग तो मिनिस्टर नहीं बन सकते। रात कूद कूद कर नाचने गाने वाले पहाड़ी लोग क्या आशा कर रहे हैं? रात स्वतंत्र हो जाने के बाद वे फिर रिक्शाओं में जुट गए होंगे। पिछले दिन दोपहर को पूरी कनक के बहुत अनुनय करने पर भी नैनीताल में 20 तारीख तक ठहरने और उसके साथ दूसरी बार लखनऊ में अवस्थी जी से मिलने जाने के लिए किसी तरह तैयार नहीं हो रहा था, परंतु लाहौर असफल लौटकर गली और घर के लोगों के सामने लज्जित होने की चिंता ने उसका विचार बदल दिया। उस दिन दोपहर में कनक से मिला तो उसने कनक से कह दिया कि वह इस शर्त पर 19 तक यहाँ रहेगा कि 20 को वह उसके साथ लखनऊ चले। पंडित जी के 18 तक नैनीताल पहुँचने की आशा थी। कनक ने पूरी को विश्वास दिलाकर वचन दे दिया। कनक ने घर में लखनऊ जाने की तैयारी शुरू कर दी। नैयर और कांता ने कुछ कहना आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने सोचा, पिताजी आ जाएंगे तो हमारा क्या उत्तरदायित्व रहेगा। 15, 16, 17 को लाहौर से आने वाले उर्दू और अंग्रेजी के समाचार पत्र नहीं आए। दिल्ली से आने वाले पत्रों में समाचार थे। अमृतसर और लाहौर के बीच रेलगाड़ी का आना जाना बंद हो गया था। केवल सैनिकों की सुरक्षा में ही सवारी की बसें सड़कों के रास्ते आ जा रही थीं। इन अधूरे समाचारों से नैनीताल में एकत्र पंजाबियों के मन और भी अधिक आशंकित हो रहे थे। 20 अगस्त दोपहर से पहले पुरी ने दिल्ली से आए अखबार में पढ़ा, पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने लाहौर के रंग महल, लोहे का तालाब, समीप की गलियों और ग्वाल मंडी, पुरानी अनारकली में शेष रहे हिंदुओं को अपने घरों से हटाकर सुरक्षा के लिए डीएवी कॉलेज की इमारतों में बना दिए कैंपों में इकट्ठा कर दिया था। गुजरांवाला और लायलपुर में भी सब हिंदुओं को कैंपों में इकट्ठा कर देने और उपद्रवियों द्वारा बाजारों को लूटने, हिंदू स्त्रियों को निरावरण करके उनके जुलूस निकाले जाने के लिए भी समाचार थे। पुरी का हृदय धक से रह गया। उसने समाचार को कई बार पढ़ा और निश्चय कर लिया कि जिस तरह से भी हो उसे तुरंत लाहौर जाना होगा। ऐसी स्थिति में वह किसी भी कारण से रुक नहीं सकता। उसने तुरंत अपना सामान समेट कर बांध लिया। 12:30 बजे वह लाइब्रेरी में कनक से मिलने गया। कनक बहुत चिंतित थी। पिताजी 18 की संध्या भी नहीं आए थे। उनका पत्र आया था। पंडित जी दिल्ली में माँ के साथ एक होटल में ठहरे थे। बिधिचंद का परिवार एक कैंप में था। पंडित जी दिन रात सिर छिपा सकने लायक जगह की खोज में थे। दिल्ली में लाखों आदमी पंजाब से चले आ रहे थे। भय था यदि मकान का प्रबंध किए बिना वे नैनीताल चले आए तो लौट कर मकान मिल सकना और भी कठिन होगा। पुरी ने कनक को लाहौर के संबंध में पढ़ा, समाचार सुनाकर तुरंत लाहौर लौटने का अपना निश्चय बता दिया। कनक विरोध नहीं कर सकी। परिस्थिति ऐसी ही थी। अध्याय 17। बरेली स्टेशन पर पुरी को छोटी लाइन की गाड़ी बदलकर बड़ी लाइन पर पश्चिम जाने वाली डाक गाड़ी में बैठना था। डिब्बे में बहुत भीड़ थी। पुरी डिब्बे में बड़ी मुश्किल से घुस पाया। डिब्बे में हिंदू और मुसलमान दोनों ही मौजूद थे। एक मुसलमान बैठना चाहता था तो एक हिंदू से उसकी लड़ाई हो गई। पुरी ने मुसलमान को जगह दे दी तो सब हिंदू पुरी पर बिगड़ उठे और फिर हिंदू मुसलमान की बहस चालू हो गई। एक प्रौढ़ ने थोड़ा दबकर पुरी के लिए जगह बना दी। हर स्टेशन पर भीड़ की भीड़ डिब्बे में घुसने का यत्न करती। डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि अंदर बैठे मुसलमान भी घुसने वाले मुसलमानों का विरोध कर रहे थे। डाक गाड़ी सब स्टेशनों पर थोड़ा बहुत पिछड़ती पिछड़ती बहुत लेट चल रही थी। भीड़ के कारण ठीक से बैठने की भी जगह नहीं थी। पुरी ने कुछ पढ़ना चाहा, परंतु भीड़ के दबाव के कारण उठकर सूटकेस से पुस्तक निकालना संभव न था। रात पलक झपके बिना बोझ से दबते दबते बीत गई थी। अंबाला स्टेशन पर इतनी बड़ी भीड़ गाड़ी की ओर लपकी कि भीतर बैठे सभी लोग घबरा गए। प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी के भीतर आना चाहने वाली भीड़ ऐसी आतुर और आतंकित थी जैसे उसी गाड़ी में न चढ़ जाने से वे निश्चय ही मृत्यु के मुंह में चले जाएंगे। गाड़ी बहुत अधिक भर जाने और छतों पर भी लोगों के लद जाने के कारण स्टेशन से चल ही नहीं पा रही थी। लाठी और बंदूकें लिए बहुत से सिपाहियों ने भय दिखाकर रोते कलपते लोगों को छतों पर से उतारा। गाड़ी चल देने पर भी गाड़ी के दरवाजों के साथ डंडे पकड़कर लोग पायदान की पटरियों पर खड़े चल रहे थे। गाड़ी चलने के कुछ मिनट बाद इतनी शांति हो गई कि ऊंचे स्वर में कही गई बात सुन ली जा सकती थी। मुसलमान आपस में एक दूसरे को अपने नुकसान आदि के बारे में बताने लगे। अब डिब्बे में केवल दो ही हिंदू थे। ऐसी बात सुनकर पूरी को आशंका हो रही थी, परंतु चारों ओर बैठे लोगों की आंखों में धमकी नहीं, कातरता और भय की छाप थी। अंबाला स्टेशन के बाद गाड़ी की चाल बहुत धीमी हो गई। हर स्टेशन पर सैकड़ों मुसलमान उन्हें ले जा सकने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे थे। दोपहर को गाड़ी सरहिंद स्टेशन पर रुकी। स्टेशन के परे से भीड़ का हो हल्ला सुनाई दे रहा था। केवल डाक उतारी और लादी गई और गाड़ी चल दी। गाड़ी सिग्नल को लांघ कर कुछ ही दूर गई थी। लाइन के साथ साथ लगे तारों के परे शहर की बस्ती अभी बिल्कुल पीछे नहीं छूट पाई थी। गाड़ी के पहिए रगड़ खाकर चेंचियाए और गाड़ी रुक गई। बहुत समीप बंदूकें चलने के धमाके के साथ गाड़ी की काठ की दीवारों पर गोलियों की चोटों की आहटें हुई। तारों के पीछे बस्ती में से बरछे, फरसे, तलवारें और बंदूकें लिए भीड़ गाड़ी की ओर झपट पड़ी। गाड़ी पर गोलियां पड़ रही थीं। पुरी के समीप खिड़की में बैठा प्रौढ़ चीख उठा। उसके कंधे से खून बह गया। पुरी ने बचने के लिए सिर आड़ में कर लिया। एक और आदमी चिल्लाया, हाय, मार डाला, हाय हाय, और चीख पुकार से गाड़ी भर गई। खिड़कियां बंद करो, घबराए हुए लोग चिल्लाने लगे। आक्रमण करने वाले गाड़ी के पायदानों पर चढ़कर खुले दरवाजे और खिड़कियों से बरछे और फरसे चलाने लगे और सामने पड़ने वालों को बाहों से पकड़ पकड़ कर बाहर खींचकर गिराने लगे। आक्रमणकारियों को गाड़ी के दरवाजे में आते देखकर भीतर के लोगों ने पीछे दबकर उन्हें जगह दे दी थी। तीन जवान तलवारें और एक जवान बरछा लिए भीतर आ गए। बरछे या तलवार का एक बार और गाड़ी से बाहर धक्का। सवारियों के साथ असबाब की गठरियां और बक्स भी फेंके जा रहे थे। आसपास गोलियां भी दग रही थीं। एक साथ बैठी एक प्रौढ़ा और जवान स्त्री बहुत जोर से चीख कर एक दूसरे से लिपट गई थीं। बरछा हाथों में लिए आदमी ने बरछा बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से जवान स्त्री के दुपट्टे में से केसों को पकड़कर उसे दरवाजे की ओर लुढ़का दिया और लात के धक्के से नीचे गिरा दिया। बरछा उठा और दोनों हाथ उठाए। भय से रंभाती हुई बुढ़िया के खुले मुंह और गले को फाड़ कर निकल गया। सफेद पोश मुसलमान ने कातरता से गिड़गिड़ा कर प्राणों की भिक्षा के लिए तलवार उठाए जवान के घुटने पकड़ लिए। तलवार और उसकी पसलियों के नीचे धस कर उठ गई। उसके समीप बैठी स्त्रियां भय से लुढ़क कर गिर पड़ी। आधी गाड़ी खाली हो गई थी। आक्रमण का प्रतिरोध करने की शक्ति किसी में नहीं थी। पूरी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। गला सूख गया था। पूरी के साथ यात्रा करते सिख की पुकार सुनाई दी, भाइयों, मैं सिख और वह हिंदू भाई है। पूरी भी चिल्ला उठा, मैं हिंदू, मैं हिंदू, 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 और भी कई पुकारें सुनाई दी। बहुत सी राइफलें एक साथ दगने के धमाके सुनाई दिए। फरसे भाले लिए लोग गाड़ियों से कूदकर फिर बस्ती की ओर भागने लगे। बाढ़ की तार के साथ की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर कई जीपें दौड़ती चली आ रही थीं। राइफलें लिए सिपाही जीपों से कूद पड़े थे। राइफलों और बंदूकों के फायर बंद हो गए। केवल हाय हाय, चीखने, रोने और सिसकने के शब्द सुनाई देने लगे। सिपाहियों ने हुक्म दिया, सब लोग गाड़ी पर चढ़ जाओ। हुक्म कई बार दोहराया गया। गाड़ी के नीचे गिरा दिए गए लोगों में से कुछ लोग चढ़ाए। पुरी के समीप की खिड़की के नीचे पड़े एक मुसलमान ने पुरी से उसे ऊपर उठाने को कहा। पुरी ने सहारा देकर उसे ऊपर खींच लिया। सब सहमे हुए थे। बच्चे स्तब्ध और सुन्न थे। कई सिपाही जख्मियों को उठाकर गाड़ी में डाल रहे थे। गाड़ी प्रायः घंटे भर बाद चल सकी। लाइन के दोनों ओर बहुत सी लाशें, गठरियां और बक्से पड़े रह गए थे। गाड़ी लुधियाना स्टेशन पर रुकी। हुक्म सुनाया गया। सब लोग गाड़ी से 2 मिनट में उतर जाएं, आगे लाइन पर हमले का खतरा है। गाड़ी आगे नहीं जाएगी। सवारियों को स्टेशन के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सवारियों को हिफाजत के लिए मुस्लिम पनाह गुजी कैंप में जाना है। सवारियां गाड़ी से उतरकर अपना असबाब संभालने लगीं। पूरी का सूटकेस गाड़ी में नहीं दिखाई दिया। वह विचित्र स्थिति में था, खोजने का अवसर भी नहीं था। पूरी ने अपने बिस्तर को बगल में दबा लिया और एक अफसर के पास जाकर उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ और मुस्लिम कैंप में नहीं जाना चाहता। अफसर ने पूरी से नाम और काम पूछा तथा पूछा कि वह जाना कहाँ चाहता है। इस पर पूरी ने बताया कि अपने परिवार की सहायता के लिए लाहौर जाना जरूरी है। अफसर ने उसे स्टेशन से बाहर पहुँचवा दिया। पूरी के लिए लुधियाना अपरिचित स्थान था। पिछले अनुभवों के कारण उसका मन और शरीर इतने विक्षिप्त और शिथिल थे कि सोचना या काम करना उसके लिए संभव न था। वह 2 घंटे तक लेटा लेटा सोचता रहा कि घर वालों का पता कैसे चलेगा। लुधियाना में भी लाहौर से काफ़ी लोग आए होंगे। यह सोचकर पूरी ने अपने परिवार को हर कैंप में ढूंढने का निश्चय किया। पूरी ने आधी रात तक और दूसरे दिन घूम घूम कर सब कैंपों में पता लगा लिया। उसके परिवार का कहीं पता न लगा। अफवाह थी कि पश्चिम से हिंदुओं के आने के लिए बल्लूकी हेड और फिरोजपुर का रास्ता दिया गया है। पूरी तीसरे दिन प्रातः फिरोजपुर के लिए चल पड़ा। गाड़ी में भीड़ नहीं थी। मोगा तहसील स्टेशन वीरान सा लगा। प्लेटफार्म पर जगह जगह खून फैला हुआ था, लाशें पड़ी हुई थीं। गाड़ी मोगा स्टेशन से चलना ही नहीं चाहती थी। पूरी भूख से परेशान था, परंतु गाड़ी छूट जाने के डर से प्लेटफार्म पर उतरकर कुछ खाने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। पूरी के डिब्बे में 4-5 जाट 2 लड़कियों को घसीट कर ले आए। लड़कियों की दशा बुरी हो रही थी। वे लड़कियां देहाती मुस्लिम परिवारों की लग रही थीं। पूरी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया और करवट लेकर लेट गया। अगले ही स्टेशन पर वे जाट लड़कियों को लेकर उतर गए। डिब्बे में बैठे लोग बात करने लगे, न जाने लोगों को क्या हो गया है। भलमनसाहत और आदमियत खत्म हो गई है। जिसे देखो तमंचा बंदूक लिए फिर रहा है। पूरी का मस्तिष्क जड़ सा हो रहा था। वह सोचने लगा, क्या हो गया है सबको? यह हिंसा, ध्वंस और विभत्सा की दानी प्रवृत्ति कहाँ से जाग उठी है? वह अपने परिवार और मोहल्ले की स्त्रियों के बारे में सोचने लगा। ऐसी अवस्था में उसे चित्तौड़ की पद्मिनी की चिता में कूद कर प्राण देने की बातें याद आने लगी। उसने अपने से प्रश्न किया, क्या स्त्री के लिए अपमान और यातना से बच सकने के लिए मृत्यु की शरण लेना ही एकमात्र उपाय है? गाड़ी फिरोजपुर छावनी स्टेशन तक पहुंच गई। यहाँ लुधियाना से भी अधिक भीड़ थी। पूरी को गाड़ी से उतरना कठिन हो गया। थोड़ी देर पहले धीमे धीमे बरसते पानी ने अब जोर पकड़ लिया। पूरी के लिए यह जगह अपरिचित थी। वर्षा में वह कहाँ जाता? वह अपना बिस्तर बगल में दबाकर मुसाफिर खाने की ओर बढ़ गया। उसे ऊंची पुकार सुनाई दी, जिस भाई बहन ने भोजन न पाया हो लंगर में आकर ले ले। पूरी भूख की उपेक्षा न कर सका। उसके कदम लंगर की ओर उठ गए। पूरी ने मुसाफिर खाने में आकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर बिस्तर बिछाकर लेटने को उसे कहीं जगह न दिखाई दी। बड़ी कठिनाई से थोड़ी सी जगह मिली। वह वहीं किसी तरह बिस्तर का तकिया बनाकर लेट गया। बहुत सवेरे ही पूरी अपने परिवार का पता लेने के लिए स्टेशन से चल पड़ा। सब कैंपों, मंदिरों, गुरुद्वारों, अनाथालयों आदि में देखते देखते रात हो गई। बगल में दबा बिस्तर पूरी के लिए संकट बन रहा था, परंतु अपनी एकमात्र संपत्ति को यह किसे सहेज सकता था? दूसरे दिन पूरी फिरोजपुर शहर के कैंपों की छानबीन के लिए छावनी से शहर गया। कुछ कैंपों में देखकर वह सराफा बाजार से चल रहा था कि उसे एक दुकान पर कालीचरण कौल अपने परिवार सहित खड़ा दिखाई दिया। परिवार के सब लोगों की हालत खराब हो रही थी। दोनों गले मिले। पूरी ने कौल से अपने परिवार के बारे में पूछा तो कौल ने कहा कि मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। कौल ने बताया कि वे लोग आज ही यहाँ पहुँचे हैं। जेब में पैसा नहीं है, बच्चे के लिए दूध लेना जरूरी है, चूड़ियाँ बेच रहे हैं, सुनार बहुत कम दाम दे रहे हैं। पूरी ने कौल के मना करने पर भी बच्चे के लिए दूध लिया और बाकी सबको लस्सी पिलाई और पैसे स्वयं ही दिए। पूरी कौल के परिवार को अच्छी जगह दिखाने के लिए एक स्कूल तक ले गया। कौल ने पूरी को समझाया कि या तो तुम्हारे घर वाले अमृतसर भेज दिए गए होंगे, नहीं तो एक दो दिन तक यहाँ आ जाएंगे। तुम अमृतसर चले जाओ, मैं यहाँ देखता रहूँगा। फिरोजपुर से अमृतसर जाने वाली लाइन सतलज पार कसूर जंक्शन होकर जाती थी। अब वह भाग पाकिस्तान में था, अतः अमृतसर जाने के लिए फिरोजपुर से लोहिया खास और जालंधर होकर जाना पड़ता था। पूरी सूर्योदय के कुछ समय बाद जालंधर पहुंचा। जालंधर में नगरों से आए दुकानदार और व्यापारी हिंदू सिखों की संख्या अधिक थी। स्टेशन के बाहर अच्छा खासा बाजार लगा हुआ था। लोग हर तरह का सामान बेच व नीलाम कर रहे थे। पूरी ने किसी और भी ध्यान नहीं दिया, चुपचाप अपना बिस्तर बगल में दबाए सेवा समिति की छोलदारी में गया। वहां कुछ पता नहीं मिला तो वह दूसरे कैंपों में पता लगाने चला गया। पूरी बहुत थक गया था, पर सवारियां महंगी थीं। कनक का दिया कुछ पैसा पूरी के पास था। ऐसी अवस्था में वही पैसा उसका सहारा था, अतः वह पैदल ही चलता रहा। पूरी का शरीर दिन भर धूप में पैदल चलते रहने से पसीने से चिपचिपा रहा था। अब बगल में दबा बिस्तर जान की मुसीबत बना हुआ था। उसने दो तंदूरी रोटियां दाल से खाकर पानी पी लिया। अब थकान के कारण बिस्तर को दबाए परिवार को ढूंढने के लिए दूसरी जगह को चल देना उसके बूते का न था। वह कॉलेज की ओर एक और इमारत के बरामदे में कुछ स्थान खाली देखकर उसी ओर चला गया। वहां पहले से ही काफी लोग जगह जगह अपना डेरा जमाए बैठे थे। पूरी ने भी एक जगह अपना बिस्तर रख लिया था। एकाएक उसने बाईं ओर एक कमरे में बधवा मल नारंग को परिवार सहित बैठे देखा। नारंग जी ने पूरी को देखा तो दोनों ही एक साथ एक दूसरे से मास्टर जी के बारे में पूछ बैठे। इतने में नारंग जी की पत्नी बेजी उठ गईं। उन्होंने पूरी से पूछा कि क्या वह लाहौर से नहीं आया है। उसने उन्हें संक्षेप में नैनीताल जाने, अखबारों से खबर पाकर लौटने एवं रास्ते की सारी घटनाएं बता दी। नारंग जी ने अपने बारे में बताना शुरू किया कि कैसे वे सब कुछ छोड़कर थोड़ा सा सामान लेकर जान बचाकर चले आए। पूरी का मन अपने परिवार की चिंता में ही डूबा हुआ था। उसने नारंग जी से पाकिस्तान जाने वालों के साथ जाने के विषय में बात की तो नारंग जी ने समझाया कि व्यर्थ मौत के मुंह में क्यों जाते हो। नारंग जी पूरी को अपने दाएं बाएं बैठे लोगों के दुख के बारे में बताने लगे। उन्होंने उसको धैर्य रखने का उपदेश दिया। हजामत बनाकर नहा धो लो, दाढ़ी बढ़ी हुई है, कहीं कोई मुसलमान ही न समझ बैठे। पूरी ने कहा कि उसका हजामत का सामान सूटकेस में था, सूटकेस ही गुम हो गया। नारंग जी ने उर्मिला से कहकर बड़े लड़के जगदीश का हजामत का सामान मंगवा कर उसको दिया। पुरी ने जगदीश और प्रवीण के बारे में पूछा तो नारंग जी ने बताया कि जगदीश शहर से मेरे लिए दवाई लेने गया है, प्रवीण ऊब रहा था सो उसे भी साथ ले गया है। पुरी की दृष्टि उर्मिला की ओर चली गई। वह बिल्कुल बदल गई थी। अगर वह उसे कहीं अकेले में देखता तो पहचान भी न पाता। उसने पुरी की ओर एक बार फिर भी नहीं देखा, चुपचाप सामान लाकर रख दिया और चली गई। वह हजामत बना रहा था तो नारंग जी अपनी गली में झेले संकटों का ब्यौरा सुनाते जा रहे थे। पूरी अपने संकट की बात सोचते सोचते उर्मिला की बात सोचने लगा था। क्या हो गया, प्रेम की चाह का दुर्दम झरना आंसुओं का गदला चहबच्चा बन गया है। पूरी हजामत बनाकर नहा भी आया। वह कंबल बिछाकर लेट गया। भूख मालूम हुई पर थकावट से नींद आ गई। पूरी की नींद टूटी तो घना अंधेरा हो गया था। नारंग जी के कमरे की सांकल अंदर से बंद हो गई थी। उसने सुबह 8 बजे दो रोटियां खाई, अब 9 बज रहे थे। उसे बड़ी भूख मालूम हुई। बाजार मील भर दूर, पहले तो वह लेटा रहा परंतु भूख व्याकुल करने लगी। उसने उठकर बिस्तर लपेटा और कनक के दिए पैसों में से बचे 23 रुपये 7 आने पतलून की जेब में रख कर चलने को हुआ। उसने जाते जाते पास बैठे बूढ़े से अपना बिस्तर देखते रहने की प्रार्थना की। अभी पूरी कॉलेज की इमारत से 100 कदम ही आगे बढ़ा था कि लुटेरों ने आकर उसे लूटना चाहा। उसने कहा कि मैं तो हिंदू हूँ। इस पर लूटने वालों ने कहा, यहाँ तो सब हिंदू हैं, हम लूट कर आए हैं और हमें भी तो अपना और बच्चों का पेट भरना है। लुटेरे उसकी कलाई घड़ी और उसकी कुल जमा पूंजी भी ले गए। पूरी कुछ देर असहाय मौन खड़ा रहा, फिर कॉलेज की ओर वापस लौट गया। बरामदे में पहुंचकर उसने बिस्तर बिछाया और सिर पकड़ कर लेट गया। अब यह जान सकने का भी साधन नहीं कि रात कितनी गई, कितनी शेष थी। सुबह वह क्या करेगा यह सोचना भी व्यर्थ था। प्रातः की धूप उसके मुंह पर पड़ने लगी तो उसकी नींद खुली। वह धूप से बचने के लिए उठकर बैठ गया। नारंग जी दरी पर बैठे सिगरेट पी रहे थे, वह नहा धो चुके थे। बेजी परौठे सेक रही थीं। एकाएक फाटक की ओर से पुकारे सुनाई दी, ओए लोगों दौड़ो, जल्दी दौड़ो, सड़क पर मुसलमानियों का तमाशा देखो। बहुत से लोग दौड़ गए। वही बिस्तर जो 4 दिन से जान का बवाल हो रहा था अब एकमात्र सहारा था। स्टेशन के सामने बिस्तर को बेचकर ही कुछ मिल सकता था। पूरी ने बिस्तर को समेट लिया और बगल में दबाकर नारंग जी से नमस्ते कहकर चल दिया। नारंग जी ने बिस्तर उनके कमरे में ही रख देने को कहा, पर उसने कहा कि बोझ थोड़ा ही है, शायद आगे चला जाऊं, और बिस्तर बगल में दबाए वह उसी मार्ग पर चल दिया जिधर रात को गया था। कुछ दूर आगे बढ़ा तो बस्ती के पहले मकानों से कुछ इधर ही लोग तरह तरह की चीज़ें बेच व नीलाम कर रहे थे। पूरी ने सोचा, मैं भी यहीं बैठकर अपना बिस्तर बेच दूं, इतनी दूर स्टेशन जाने का क्या फ़ायदा। एकाएक पूरी का ध्यान बस्ती की दीवारों के पास खड़ी भीड़ की ओर चला गया। भीड़ से आती आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। पूरी समझ गया कि वहाँ भी नीलाम हो रहा था। उसने अंदर झांक कर देखा तो स्तब्ध रह गया और उसके कदम पीछे हट गए। भीड़ के बीचों बीच एक आदमी चोटी से पकड़ पकड़ कर निर्वस्त्र लड़कियों को नीलाम कर रहा था। सब लड़कियां मुसलमान ही थीं। एकाएक विनोद के कहकहों में एक आदमी का कुछ स्वर सुनाई दिया, कुछ शर्म करो, आगा पीछा सोचो, तुम लोग इनकी इस तरह बेइज्जती करोगे तो कोई भल मानस इन्हें घर में कैसे बसा सकेगा। इससे तो अच्छा है इनकी गर्दन काटकर परे फेंक दो। तुम मूसलों से किस बात से अच्छे हो? उन्होंने क्या बुरा किया जो तुम नहीं कर रहे हो? कुछ लोगों ने उस व्यक्ति का समर्थन किया। पूरी सिर झुकाए लौट आया और स्टेशन की ओर चल पड़ा। स्टेशन के सामने अस्थाई बाजार में अपनी दरी बिछाकर अपना कंबल, चादर और तकिया अलग अलग रख कर बैठ गया। बेचने के लिए उससे पुकार लगाते न बनता, परंतु आवश्यक था। वह समीप से गुजरते लोगों से सहमता हुआ कह लेता, भाई नई चीज़ें हैं, सस्ती दे दूंगा। पुरी ने अपनी निर्बलता के लिए अपने आप को ही फटकारा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह भूख और सिर दर्द से विवश हो गया। सिर दर्द की दवाई खाना आवश्यक था। पीड़ा से जड़ होते मस्तिष्क में वह कल्पना करने लगा कि वह भी लूले लंगड़े भिखारियों के साथ भीख मांग रहा है। उसे ग्लान हुई कि मुझे क्या होता जा रहा है। पूरी की आंखें दर्द के कारण खुल नहीं रही थीं। वह किसी तरह उठा, उसने बिस्तर लपेटकर बगल में दबा लिया और लोगों से मुफ्त राशन बांटने वाले स्थान का पता पूछने लगा। पता चल जाने पर वह उसी ओर चल दिया। पाव भर आटा और छटाक भर दाल बांटने वाला खद्दरधारी व्यक्ति सामने खड़ी भीड़ को बार बार धैर्य से काम लेने के लिए कहकर चेतावनी दे रहा था। भाइयों, अपना धर्म ईमान समझ कोई दो बार न ले। कोई भाई बहन खाली हाथ रहेगा तो दो बार लेने वाले को पाप लग होगा। भीड़ में से किसी ने समर्थन किया, हाँ भाई, पिछले जन्म में किए पापों का दंड भगवान क्या कम दे रहा है, या धोखा देने से जाने क्या होगा। सबर से प्रसाद लो भाई, सबर से, यह स्वराज्य का प्रसाद है। किसी दूसरे ने अपनी पीड़ा में व्यंग्य का पुट देना चाहा। यह क्या स्वराज हुआ, कोई खिन्नता से झुंझलाया, पाव भराटे के लिए मोहताज हो गए। कांग्रेस वालों ने राज पाया है, हमें पाव भराटा बांटकर पुण्य भी कमाए। हंसने वालों ने फिर कहा और उसने जोर से कह कहा लगा दिया। पूरी उन लोगों की तरफ देखता रहा और क्यू में उसके पीछे खड़े कई आदमी उसको लांघ कर आगे बढ़ गए। अध्याय 18। दोपहर बाद लगभग 5 बजे का समय था। तारा के सतर्क कानों ने नीचे बैठक से हाफिज जी की पुकार सुनी, बेटा कमरू सुनो। कमरू के जीने से धम्म धम्म नीचे उतरने की आहट सुनाई दी, फिर सुनाई दिया। कमरू जीना चढ़कर लोहे के जाल को अपनी कदमों से झम झम बजाती रसोई के समीप बरामदे में बैठी अपनी माँ और दादी के पास जाकर कह रही थी। तुरंत ही कमरू तारा के सामने आ गई और हाँफती हुई बोली, नीचे गली में सिपाही खड़े हैं, आपको कैंप में ले जाने के लिए आए हैं। तारा तुरंत उठ खड़ी हुई, दुपट्टे से सिर और कंधों को लपेट लिया। खुर्शीद और उसकी सास उसे विदा देने के लिए आगे नहीं बढ़ी। तारा ने उन्हें दूर से ही मौन नमस्कार किया और जीने से उतर गई। तारा को बैठक के दरवाजे पर आराम कुर्सी पर बैठे हाफिज जी दिखाई दिए। तारा ने उन्हें झुककर सलाम किया, अल्लाह तुझ पर रहम करे। हाफिज जी ने उदास स्वर में आशीर्वाद दिया। तारा ने झांक कर देखा, गली में एक जवान उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था। वह पुलिस की वर्दी नहीं पहने था, परंतु लगता पुलिस का ही आदमी था। उसके हाथ में पुलिस अफसर का बेत था। उसने तारा से प्रश्न किया, तुझे ही कैंप में जाना है? तारा ने सिर झुकाकर हामी भरी। उसने बताया कि गाड़ी उधर खड़ी है। तारा को उस आदमी के चेहरे से आश्वासन न हुआ, परंतु उसे हाफिज जी के घर से भेजा जा रहा था तो कैसे न जाती। गली के सामने ही एक जीप खड़ी थी। ड्राइवर के स्थान पर पुलिस की वर्दी की कमीज पहने एक जवान बैठा था। तारा को उसी के साथ बैठाया गया और बुलाकर लाने वाला जवान उसके पास ही बैठ गया। तारा के पास ही नीचे एक टोकरी में 4-5 मुर्गे थे, जिनकी टांगें बंधी हुई थीं। जीप बाजार लाकर सड़क पर पहुंच गई। गाड़ी की चाल तेज हो गई। कुछ दूर जाने पर उसे लगा कि गाड़ी रावी के पुल की ओर जा रही थी। तारा घबरा गई। साहस करके उसने टोका, मुझे डीएवी कॉलेज के कैंप में जाना है। तारा के पास बैठे जवान ने कहा कि वहां जगह नहीं है, शाहदरे के कैंप ले जाने का हुक्म है। तारा 2-3 बार अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ शाहदरे जा चुकी थी। जब जीप आगे बढ़ती गई तो उसने फिर आपत्ति की, शाहदरा तो पीछे रह गया। सामने बैठे जवान ने उसे डांट कर चुप रहने को कहा। तारा ने जोर से कहा कि जीप रोक दो, मैं नहीं जाऊंगी। जब उसकी बात का इन जवानों पर कोई असर न हुआ तो तारा मरने के लिए जीप से कूदने को अपनी सीट पर घूम गई। पास बैठे जवान ने उसे पकड़ लिया। तारा के छुड़ाने की कोशिश करने पर दोनों जवानों ने उसे घुटनों के नीचे दबा लिया और कई मुक्के और चोटें उसकी पीठ पर पड़ी और वह बेहोश हो गई। तारा ने आंखें खोली तो धुंधला सा एवं अपरिचित पड़ा सा आंगन दिखाई दिया। उसे मुख पर जलन और सिर में दर्द और चक्कर जान पड़े। पलकें खोलने पर उसे 3 स्त्रियां आपस में झगड़ती हुई दिखाई दीं। एक निर्वस्त्र थी, एक के शरीर पर केवल सलवार और एक केवल लंबा सा कुर्ता पहने थी। तारा सुध संभालने के लिए अपना सिर झटक कर सोच रही थी, कहाँ हूँ? तारा बांह टेक कर उठी और घुटने समेट कर बैठ गई। कुछ देर सिर की पीड़ा से जलती हुई आंखें झपकती रहीं। केवल कुर्ता पहने स्त्री जिसका नाम बंती था, तारा को उठी देख उसके समीप आ गई और उसने तारा से पानी पीने का अनुरोध किया, परंतु तारा ने इनकार कर दिया। उन तीनों स्त्रियों की बातों से तारा ने समझ लिया कि उसकी मूर्छित अवस्था में निर्वस्त्रा स्त्री उसका कुर्ता उतार कर पहनना चाहती थी। तारा बहुत देर तक घुटने पर ठोड़ी रखे परिस्थिति को समझने का यत्न करती रही, सोचती रही। तारा आंगन के बीचों बीच जहाँ उसे सुध आई थी वहीं घुटने समेट कर बैठ गई थी। बैठी बैठी थक गई तो वहीं फर्श पर लुढ़क गई। इसी तरह तारे धुंधले हो गए। अंधकार में पाँव फटने की सफेदी मिलने लगी। तारा ने स्थान नहीं बदला था, केवल करवटें बदलती रही थी। सवेरा होने पर स्त्रियों ने बिना झिझक निपटने और नहाने का काम आंगन में ही आरंभ कर दिया। तारा ने घेरा से मुंह फेर लिया तो एक स्त्री ने समझाया कि हर तरफ तो ताला बंद है, कोई कब तक इंतजार कर सकता है। बंती नित्य ही अपने धर्म विश्वास का अनुष्ठान पूरा कर लेती थी। वह अपना काम करके तारा को समझाने लगी कि भूखे प्यासे रहने से क्या होगा, यहाँ कौन अपना है जो भूखे देखकर दुखी होगा। तारा ने बंती की बात सुनी तो उसे रोना आ गया। उसने कहा कि मैं तो मरने का यत्न करके हार गई, मर जाऊं तो और क्या चाहिए। बंती ने तारा को समझाया कि मरना जीना मनुष्य के हाथ की तो बात है नहीं। वह बोली कि मुसीबतें तो सबने झेली है। इसी प्रसंग में वह अपने गांव की बातें भी बताने लगी कि कैसे मुसलमानों ने उन्हें स्टेशन तक केवल बदन के कपड़े और जेवर एवं सफ़र का खर्च लेकर एक जगह एकत्र होने का हुक्म दिया। इतने में सतबंत भी वहां आ गई और उसने बंती को टोक कर अपने गांव की बात बतानी आरंभ कर दी। उसने बताया कि कैसे स्टेशन पर मुसलमान सिपाहियों ने हमारे मर्दों की बंदूकें ले लीं और हम लोगों को लुटवा दिया। वह ऊंचे स्वर में रोने लगी। बंती ने सतवंत के रोने की ओर ध्यान नहीं दिया और फिर अपनी बात कहने लगी कि जब हम लोग एक जगह जमा हो गए तो मुसलमानों ने हम लोगों को घेर लिया। उसने बताया कि उसकी ननद को एक मुसलमान खींच कर लिए जा रहा था। जब मैंने उसे बचाना चाहा तो उन लोगों ने मुझे भी खींच लिया। उसकी गोद का बच्चा चिल्ला उठा तो उसकी सास ने आकर बच्चे को उसकी गोद से खींच लिया। सतवंत ने उसे फिर टोका और बताने लगी कि वह अपने बेटे को लेकर छिप गई थी, परंतु जाली मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया और उसके बच्चे को छीनकर अलग फेंक दिया। सतवंत फिर रोने लगी। बंती ने सतवंत के रोने की परवाह न की और कहती गई कि मुसलमान ने 3 जवान औरतों और 3 कुंवारी लड़कियों को पकड़ लिया था। हमारे लोग आँखों से परे हो गए थे। एक लड़की तो पास के कुएं में जाकर कूद गई। और बंती ने आगे बताया कि कैसे उन लोगों ने मारपीट कर उन लोगों का बुरा हाल किया था। यह कहकर वह रोने लगी। सतवंत कहने लगी कि सबके साथ बुरा हुआ है। जब से यहाँ आई है तब से समझो मिट्टी ख्वार नहीं हुई। बंती ने बताया कि वह रात भर बेहोश पड़ी रही। सुबह उसे होश आया था। उसने बताया कि धूप चढ़े यही मूछों वाला उसे यहाँ ले आया जो तुझे लाया था। बंती बात कर रही थी तो केवल सलवार मात्र पहने स्त्री नहा रही थी। नहा कर वह भी इनके पास आ बैठी। उसका नाम दुर्गा था। उसने भी अपना किस्सा सुनाया। बंती ने दुर्गा से कहा कि अमरों को भी नहला दे तो। दुर्गा ने बताया कि उसे बुखार है। इस पर बंती और सतवंत ने चिंता प्रकट की। सतवंत तारा को बताने लगी कि स्टेशन पर सबसे पहले इसके ही 5 महीने के बच्चे को छीनकर कसाईयों ने कुचल डाला था। बंती ने अब तारा से उठकर नहाने को कहा। उसने कहा कि जिस परमात्मा ने नरक में डाला है वही उबारेगा। उठ नहाकर कुछ खा ले, न जाने तूने कब से नहीं खाया। बंती ने तारा की बांह पकड़कर उसे उठाया और कहा चल नहा ले। तारा को दूसरी स्त्रियों के सामने नहाने में संकोच हो रहा था, परंतु वहां लज्जा दिखाना दूसरों की हेठी करना होता। अभी उसके सामने बंती, सतवंत और दुर्गा नहा चुकी थी। तारा नहा चुकी तो बंती ने रूखी तंदूरी रोटी का आधा टुकड़ा तारा को दे दिया। तारा को ऐसी रोटी खाने की इच्छा न हुई। उसने खाने से इनकार किया तो बंती ने कहा कि न खाने से मुश्किल होगा। लक्की का हाल देख, वह अभी नहीं खाती थी, फिर खाया तो बीमार हो गई। अब बुरा हाल है। यह सुनकर तारा ने कह दिया कि वह ठहर कर खा लेगी और पानी पीकर रह गई। बंती ने बताया कि जब उसे यहाँ लाया गया था तो लक्की के साथ 3 और भी लड़कियाँ थीं। दूसरे दिन सुबह ही मरा मूछों वाला कसाई 2 मर्दों को लेकर आया और उन तीनों को ले गया। लगता है यह सिरसड़ा हम लोगों को भी कहीं बेच देगा। इतने में ड्योढ़ी के दरवाजे के खुलने की थर्राहट सुनाई दी और 2 पल में एक बुढ़िया दरवाजे के सामने आ गई। वह रोटियां लाई थी। वह इन लड़कियों से प्यार से बोली, मेरा बस चले तो तुमको कभी भूखा न रखूं, पर क्या करूं, वह जालिम पैसे ही नहीं देता। मैं तो आज रोटियों में नमक भी लगवा लाई हूं। रोटियां 15 थी। पहले तो कुछ छीना झपटी हुई, फिर सबने रोटी बांट कर खा ली। बुढ़िया को पता चला कि एक लड़की और आई है तो वह जाते समय कह गई कि कल ज़्यादा रोटियां ले आऊँगी। तीसरे पहर गर्मी और अधिक हो गई। जम्हाई लेती हुई दुर्गा ड्योढ़ी के साथ की दूसरी कोठरी में चली गई। अमरों आंखें खोले छत की ओर टकटकी लगाए देखती रही। सतवंत और बंती फर्श पर लेटकर ऊँघने लगी। तारा भी लेट गई। उसने आंखें मूंद ली परंतु नींद नहीं आई। अब तक वरुचि न होने पर भी स्त्रियों की बातें सुनती रहने के कारण अपनी परिस्थिति के विषय में सोच नहीं पाई थी। गहरी चिंता से सोचने लगी। मुक्ति की इच्छा करके वह कढ़ाई में से उछलकर भट्टी की आग में आ गिरी थी। इस आंगन की अपेक्षा हाफिज जी की कैद स्वर्ग थी। अब यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ है। तारा को सतवन बंती दुर्गा पर हुए अत्याचारों की बातें मस्तिष्क में घूम गईं। किस प्रयोजन के लिए सबको यहाँ बंद करके रखा गया होगा? क्या ये सब जानती नहीं होंगी? ये लोग क्या अभी और सहने को तैयार थीं? जान पड़ता था कि भगवान ने तो उन्हें भुला दिया था, परंतु ये लोग भगवान को नहीं भुला सकती थीं। भगवान मनुष्य की जितनी चिंता करता है, उसने कहीं अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। मर जाने का उपाय भी क्या था? सिर मोड़कर मरने का यत्न किया था तो बेहोश होकर ही रह गई थी। तारा बहुत देर तक इसी उधेड़बुन में ही पड़ी रही। तारा ने आंखें खोलकर आंगन की ओर देखा तो धूप वहां से जा चुकी थी और आंगन में ठंडा होने के कारण स्त्रियां वहीं बैठी हुई थीं। संध्या का धूमिल प्रकाश चांदनी में बदल गया। रात बढ़ जाने पर स्त्रियां इधर उधर लुढ़क कर सो गईं। नींद खुलने पर कोई दो फिर बैठकर बतियाने लगतीं। पिछली रात तारा के अर्धमूर्छित अवस्था में होने के कारण जैसे तैसे बीत गई थी, पर यह रात अधिक कठिन मालूम पड़ रही थी। तारा कभी लेट जाती, कभी बैठकर सोचने लगती। उसे गत जीवन की बातें याद आने लगतीं। वह केवल कष्ट उठाने के लिए ही पैदा हुई थी। गरीब घर में पैदा ही क्यों हुई? गरीबी को पिछले जन्मों का कर्मफल मानकर संतोष क्यों न कर सकी? गरीबी से मुक्त की इच्छा क्यों हुई? अपनी इच्छा से ही विवाह करने का विचार क्यों आया? वह अभी क्या शीलों की तरह सुख दुख मिला जीवन नहीं बिता सकती थी? ससुराल की रात, नब्बू का अत्याचार, हाफिज जी का स्नेह भरा छल, मुसलमान बन जाने में ही क्या हरज था? हाफिज जी की बात अस्वीकार कर उसने क्या अपने को बचा लिया? उसके हिंदुत्व ने उसे क्या दे दिया? उसकी क्या सहायता कर दी? बंती, सतवंत, दुर्गा अब भी हिंदुत्व को लिए बैठी थीं। यह सब तो हुआ, अब क्या होगा? तारा को कभी सिर पकड़कर सोचते और कभी ऊंघते उसी आंगन में पांव फटी। वह बेचैनी में आंगन में इधर उधर चहलकदमी करती रही। धूप आधे आंगन तक उतर आई थी। सांकल गिरने की झंझनाहट सुन सारी स्त्रियां कोठरियों में हो गईं। इस बार भी आने वाली बुढ़िया ही थी। बुढ़िया को देख बंती, सतवंत और दुर्गा आंगन में चली आईं। तारा एक और खड़ी थी। तारा ने देख लिया कि बुढ़िया दुर्गा की ओर ममता भरी आंखों से देख रही थी। बुढ़िया की दृष्टि तारा की ओर गई तो उसने झट तारा से बात आरंभ करनी चाही, परंतु तारा ने मुंह फेर लिया। चौथा पहर बीत रहा था। स्त्रियां फिर बतियाने लगी थीं। तारा फिर आंगन में आकर चहलकदमी करने लगी। बंती और सतवंत बातें कर रही थीं। बंती ने तारा को भी बुला लिया। तारा ने बैठकर कहा, कब तक इस कैद में पड़ी रहेंगी? सतवंत ने कहा, भला हम क्या कर सकती हैं? हमें तो यह भी नहीं मालूम कि हम किस शहर या किस गांव में हैं। इनको बातें करते देख दुर्गा भी इनके पास आ गई। मेरी बहना, घबराहट तो होती है, पर घबराने से बनता क्या है? बंती गहरी सांस लेकर तारा को समझाने लगी। बचाने वाले तो महाराज जी ही हैं। जब उन्हें उबारना होगा, नीले अंबर को फाड़ कर प्रकट हो जाएंगे। उन्होंने प्रहलाद जी को भी जलती आग से बचा लिया था। इस कसाई ने तो हमें यहाँ ऐसे ही बंद कर रखा है जैसे कसाई नूरा हलाल करने के लिए खरीदी बकरियों को बांध कर रखता था। बहन जी ठीक ही कहती हो, बचाने वाला तो वही है, पर अपने से ही कुछ होता है। तारा बोली, यहां से निकलने का कोई भी उपाय नहीं हो सकता? कैसे निकलेंगी? निकलने का रास्ता कहाँ है? ड्योढ़ी पर बाहर ताला है, जाएंगी कहाँ? बंती बोली। मैं बताऊं? तारा उनकी तरफ झुककर बोली, बुढ़िया रोटी लेकर आए तो सब उसको पकड़ ले, उसे बांध कर डाल दे और निकल जाए। सतवंत ने टोका, क्या पागलों जैसी बातें करती है? यहाँ चार दीवारी के पर्दे में मर्दों की आंखों से बची तो बैठी है। दरवाजे के बाहर क्या होगा, इसका क्या पता है? बिल से निकलकर बिल्ली के मुंह में जाएं, मालूम होता है तू भुकती नहीं है। तुझे पता क्या है? तारा की ओर देखकर दुर्गा बोली, यहाँ सल्लम साबत तो बैठी है, बाहर जाकर अपने चीथड़े उड़वाने हैं? बंती ने अपनी नंगी पिंडलियों को छूकर कहा। इस हालत में मर्दों के सामने निकले? उसने दुर्गा की ओर संकेत किया। या बाहर निकलेगी? उसने कोठरी में पड़ी लक्खी के प्रयोजन से संकेत किया। वह बाहर जाएगी? रात भी रात का अंधेरा, 10-20 कदम जाना हो तो एक बात है, खुद ही अपनी मिट्टी को रौंदवाना हो तो फिर किसी को क्या दोष दें? यूं तो मिट्टी खराब होने में रह ही क्या गया है, पर महाराज जी जानते हैं कि अपना तो कोई दोष नहीं था, वही क्षमा और दया करने वाले हैं। बंती ने दोनों हाथ जोड़कर माथे को छुआ, लंबी सांस ली और फिर कहने लगी, केवल का बाप तो हफ्ता भर पहले ही कह रहा था कि अमृतसर चले चलें। चले ही जाने पर कर्मों का फल भोगना था, चले कैसे जाते? महाराज जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता? सीता माता रावण की कैद में रहकर भी भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंच गई थी। तू भी क्या कहती है? दुर्गा बोली, घर से एक बार निकली, दर दर ख्वार गई तीमी, अबला को फिर कौन रखता है? घर से निकली तीमी और डाल से टूटा फल, उनका फिर मेल क्या? दुर्गा ने बहुत गहरी सांस ली, मानो हृदय से सब आशा फेंक दी हो।